यह एपिसोड DBT वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस के समर्थन से तैयार किया गया है।
नेचर इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट शुभ्रा प्रियदर्शिनी। आपने शायद ये कहे जाते हुए सुना ही होगा कि आप या तो दाएं मस्तिष्क वाले हैं या बाएं मस्तिष्क वाले हैं। आप या तो कल्पनाशील हैं, अंतर्ज्ञानी हैं और रचनात्मक हैं, या फिर गणित और तर्क से प्रेरित हैं। अब कोई भी न्यूरोसाइंटिस्ट आपको यही बताएगा कि ऐसी बातें मिथक मात्र हैं, इनमें ज़्यादा दम नहीं है। जिस तरह अधिकतम क्षमता के लिए हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध यानि हेमिस्फीयर्स परस्पर संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह विज्ञान और कला का संयोग दोनों को ही बेहतर बनाता है। इस एपिसोड में हम विज्ञान कला सहयोग यानि साइंस आर्ट कोलैबोरेशंस पर एक नज़र डालते हैं, जिसके ज़रिए कलाकार और वैज्ञानिक अपनी सोच के साथ साथ कलात्मक और वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया को भी नए नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह का सहयोग असीम संभावनाओं से भरा होता है। आज के एपिसोड में प्रस्तुत तीन उदाहरण आपको ये बताएंगे कि विज्ञान और कला के साथ आने से कैसे संभावनाओं के नए द्वार खुल जाते हैं।
Semi-circular electrodes in the vacuum chamber of the cyclotron, which, so to speak, move up and down in potential. Here we have two plates that move up and down in potential, and we'll start it off.
ये अर्नेस्ट लॉरेंस का एक पुराना क्लिप है, जिन्होंने 1936 में, 1936 में, बर्कली कैलिफोर्निया में पहले साइक्लोट्रॉन या पार्टिकल एक्सेलरेटर का निर्माण किया था। इसे हमने लिया है फिल्मकार जानवी फाल्के द्वारा निर्देशित बेहतरीन साइंस डॉक्यूमेंट्री साइक्लोट्रॉन से।
तो एक बात मेरे रिसर्च के समय मुझे पता चली, वो जब मैं ये वैज्ञानिक लैब असिस्टेंट्स और उनके जो टेक्नीशियंस होते हैं, लैब टेक्नीशियंस, उनके साथ बात करते हुए मुझे पता चला कि चंडीगढ़ में या भारत में दुनिया का सबसे पुराना लेकिन काम करता हुआ एटम स्मैशर, जिसे कहते हैं, या साइक्लोट्रॉन, वो है। और ये चीज काफी वैज्ञानिकों को नहीं पता थी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स करते हैं उनको काफी हद तक पता था, मगर काफी लोगों को भारत में या बाहर भी ये बात पता नहीं थी।
जानवी की डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे पुराने कार्यरत यानी वर्किंग पार्टिकल एक्सेलरेटर के पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के भौतिकी विभाग तक पहुंचने की कहानी है, जहां ये लगभग 50 वर्षों से चल रहा है। ये फिल्म भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक रिसर्च और उच्च शिक्षा की स्थिति का भी बयान करती है।
अभिलेखा घरों को उस सीरियसनेस से नहीं लेते हैं जितना शायद लेना चाहिए। एक ब्रॉड पॉलिसी होनी चाहिए, कलेक्शंस पॉलिसी, जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मगर 1927 के बाद कलेक्शंस पॉलिसी में काफी कमियां रह गई है, जिसकी वजह से सिर्फ विज्ञान ही नहीं मगर बाकी एरियाज में भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन या आर्काइविंग या अभिलेखागारों का बनाना काफी कम पड़ा है। और वही एक वजह है कि ये जो इंटरजेनरेशनल कॉन्वर्सेशन, जिसको हम कहते हैं कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कि बात करे कि भाई हमने ये क्यों किया था, हमने वो क्यों किया था, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों ऐसा है, ये चीजें होती नहीं है।
ये सच है कि आजादी के बाद से भारत ने विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन विज्ञान अभिलेखागार यानी आर्काइव्स के मामले में और मौखिक इतिहास को संजोने को लेकर हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। लंबे समय से आर्काइविंग के काम को केवल इतिहासकारों से जोड़कर देखा जाता रहा है। मनोवैज्ञानिक भविष्य की खिड़कियां खोलने में शायद इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अतीत में झांकने की फुर्सत नहीं है। विज्ञान के इतिहासकार के तौर पर जाह्नवी फाल्के इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही हैं
कि हमारे अतीत में जो हमने डिसीजंस लिए थे उनके इफेक्ट्स या उनका प्रभाव हम आज भी देख पाते हैं। तो उस प्रभाव को समझने के लिए, हमारे आज की स्थिति को समझने के लिए अतीत में की गई चीजें या की गई बातें हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अभिलेखागार जो है, जहां हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ताकि इतिहास जो लिखना चाहते हैं वो जाके वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर पता कर पाए कि चीजें हुई तो क्यों हुई और हुई तो कैसे हुई।
ये सुनकर अच्छा लगा। जहां तक जाह्नवी की बात है तो वो क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से रिकलेक्ट नामक एक उम्दा प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जहां भारत के वैज्ञानिक अभिलेखागार में योगदान करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिकों का साक्षात्कार कर सकता है और उनकी स्मृतियों को रिकॉर्ड कर सकता है। आइए अब हम विषय परिवर्तन करते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान जगत और संगीत की दुनिया का मेल क्या कमाल कर सकता है। ऐसे वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा रही है जो कि कुशल संगीतकार भी थे। आपको मैक्स प्लैंक या अल्बर्ट आइंस्टाइन या भारत के अपने अब्दुल कलाम का नाम याद आ सकता है। आइए अब ऐसे ही एक वैज्ञानिक देवोज्योति चक्रवर्ती का अनुभव सुनते हैं।
मेरा नाम देवोज्योति चक्रवर्ती है और मैं दिल्ली में स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट हूँ। इसके अलावा मेरा एक और एक पैशन भी है जिसको मैं बहुत दिनों से परस्यू किया हूँ ऑलमोस्ट एज एमेचर म्यूजिशियन, वो है सितार वादन। मुझे शास्त्रीय संगीत में मुझे शिक्षा दिया गया है काफ़ी दिनों से, करीब 25 साल मैं इस चीज़ का चर्चा किया हूँ और मैं इस चीज़ पे देश विदेश में भी कुछ जगहों पे मैंने बजाया है। जो रेडियो टीवी ये सब मीडिया में भी मैं परफॉर्म किया है और कॉन्सर्ट्स में भी।
यहाँ वो राग भैरवी बजा रहे हैं जिसे प्रातःकालीन रागों के राजा के रूप में जाना जाता है। एक मंचीय सितार वादक के रूप में देवोज्योति ने अपने पूरे करियर में यही पाया है कि संगीत और विज्ञान भले ही एक दूसरे से अलग हैं, किसी न किसी स्तर पर उनमें समानता भी है और किसी एक कौशल पर मेहनत करना वास्तव में दूसरे में प्रवीणता को बढ़ाता है।
किसी को लग सकता है कि दो बहुत अलग चीज है, यानी कि विज्ञान की जांच, रिसर्चर की जो लाइफ है और एक जो संगीत के जो स्टूडेंट है, हम लोग संगीत वादक है, वो भी एक अलग सा लाइन है। मेरे लिए दोनों काफी अलग होने के बावजूद ये बहुत एक दूसरे का परिपूरक है। बहुत सारे ऐसे जो रिसर्चर्स थे बाहर भी और हमारे देश में भी, वो अच्छे संगीतज्ञ भी थे और संगीत की एक दिशा को पकड़ के गए थे, पर वो सारा जीवन उसका चर्चा भी किए थे। संगीत एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा भाषा है जो दुनिया के हर एक आदमी को बांध के रखते हैं। साइंस सेम टाइप का भाषा नहीं है, क्योंकि साइंस का भाषा जनरली कुछ ही लोगों में उसका चर्चा होता है, जो मानिए बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी की बात करते हैं, फिजिसिस्ट फिजिक्स की बात करते हैं, ऐसे ऐसे। पर मैंने देखा है कि संगीत की भाषा इतना यूनिवर्सल है, तो आप उस भाषा से आप बहुत सारे जगह पे कम्युनिकेट कर सकते हो और अपने जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक साइंटिफिक थॉट प्रोसेस, वो आप एक नॉन साइंटिफिक पर्सन को भी समझा सकते हैं। संगीत की सीखने की वजह से जो जो चीजों का ऑटोमेटिक हमें रियलाइजेशन होता है, एक होता है कि कोई भी कॉम्पोजिशन को ज्यादा से ज्यादा हम उसका अगर अभ्यास करते हैं, जो प्रैक्टिस या रियाज बोलते हैं, वो करने से हमारी जो मेंटल फैकल्टीज यानी कि हमारी सोचने का शक्ति, हमें एनालिटिकली देखने का शक्ति, साइंटिफिकली इस पे रिसर्च हुआ है, देखा जाता है कि प्रैक्टिस करने से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो और भी ज्यादा बेहतर डेवलप होते हैं, उसके माइलिनेशन की चीज में उसका बेटर होता है। तो ये एक्चुअली आपको जो आपका एनालिटिकल जो थिंकिंग है जो साइंटिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें प्रभावित करता है और उसको बेटर करता है। इसलिए संगीत सीखना साथ साथ में और संगीत का चर्चा करना मुझे साइंस को परस्यू करने में भी काफी सहायता किया है।
इतना ही नहीं, देवोज्योति का खुद का उदाहरण ये दिखाता है कि विज्ञान और कला के बीच सहयोग कैसे वैज्ञानिकों के बीच, पूर्व और पश्चिम के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रूप ले सकता है।
मैं जब ड्रेसडन में जर्मनी में अपना पीएचडी और पोस्ट डॉक कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था वहाँ के जो मैथमेटिक्स फैकल्टी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ड्रेसडन, वहाँ के रिसर्चर साइंटिस्ट के साथ मिलके कुछ काम करने का, जिसमें हम इंडियन म्यूजिक यानी कि भारतीय शास्त्रीय संगीत नॉर्थ इंडियन म्यूजिक को मैथमेटिकली मॉडल करने का हमने कोशिश किया था।
बेशक पूर्वी और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की व्याख्या का ढंग एक दूसरे से बहुत अलग है। ये अंतर स्वरांकन या नोटेशन की दृष्टि से तो है ही, इसलिए भी है कि रागों से अलग अलग मनोदशाओं की अभिव्यक्ति की विशेषता के कारण संगीत की भारतीय शैली बिल्कुल अनूठी है।
वैसे तो ये जो अटेम्प्ट है ये नया नहीं है, इसमें हमारे पहले भी लोग इस पे जुड़े थे और काम किए थे, पर इस बार हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे थाट बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जो 10 थाट है हमारे नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में, ये थाट बेस्ड क्लासिफिकेशन में रागा को कैसे हम चुनते हैं एक एक थाट में डालने के लिए, उसको हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं क्या, ताकि अगर कोई नया एक स्केल या एक सीक्वेंस ऑफ नोट्स कभी आ जाए जो इसके पहले किसी ने बजाया ना हो या ना सुना हो, तो उसको हम उस ग्रुपिंग के अंदर कैसे डाल सकते हैं। मेरा रोल मोस्टली होता था ये रागा को बजा के उनके लिए रिकॉर्ड करके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स है, जैसे वो रागा किस टाइम का है, वो रागा का सबसे इम्पोर्टेंट नोट क्या है, किस नोट पे ज्यादा उसमें ठहराव है, ये सब चीजें उनको एक्सप्लेन करना, और जो वहाँ के मैथमेटिशियंस और जो वहाँ के साइंटिस्ट थे वो लोग उसको मॉडल करने का कोशिश करते थे।
दिलचस्प बात है ना, विज्ञान और संगीत की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं मॉन्टपेलियर फ्रांस और एक अन्य भारतीय वैज्ञानिक से जानते हैं कि विज्ञान और थिएटर के बीच किस तरह का संबंध है।
मेरा नाम है प्रभुवन चक्रवर्ती, मैं अभी मॉन्टपेलियर फ्रांस में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में नियोजित हूँ। बंगाल का एक बहुत ही मशहूर एक थिएटर कलाकार, नाट्य कलाकार रोमा प्रसाद गुणिक, जो मेरा गुरु है, उनके पास मैंने 10 साल तक थिएटर की पढ़ाई की है। इसके साथ साथ म्यूजिकल थिएटर मैं सीखा हूँ राजा भट्टाचार्य से, और इसके बाद बेंगलुरु में आके मुझे थिएटर साइंस, थिएटर को यूज करके कैसे विज्ञान के बारे में बताया जाए, इसका ट्रेनिंग मैंने थोड़ा सा लिया है जेफ पियर के साथ, जो स्कॉटलैंड के एक मशहूर थिएटर डायरेक्टर थे।
प्रभोहन कहते हैं कि थिएटर से उन्होंने कथा प्रस्तुति या स्टोरी टेलिंग के महत्व को जाना, जो कि विज्ञान के क्षेत्र पर भी लागू होता है। इसी तरह थिएटर भी जटिल वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का माध्यम हो सकता है। उन्होंने कुछ साल पहले की एक बात बताई जब उन्होंने एक बाघ और एक बच्चे के बीच दुर्भाग्यपूर्ण भिड़ंत के बारे में एक संगीत नाटिका प्रस्तुत की थी। शो खत्म होने के बाद उन्होंने ये पाया कि दर्शक मानव गतिविधियों के कारण वन्य जीवों के हैबिटेट लॉस और पारिस्थितिक तंत्र के संकट जैसे इकोलॉजी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि अपने नाटक में उन्होंने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था।
किसी ने आके मुझे पूछा कि अच्छा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मनुष्य और पशुओं का बीच में जो लड़ाई है ये एक इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, तो इसके बारे में मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, बट अभी मुझे असलियत में समझ में आया। ऐसे प्रश्नों को सामने लाने के लिए आई थिंक नाटक के माध्यम में विज्ञान के बारे में बात करना एक बहुत जरूरी कौशल, एक बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है।
ये दिलचस्प बात है कि सितार वादन के कार्यक्रम या नाटक प्रस्तुति जैसे बिल्कुल असंबद्ध मौकों पर भी कैसे लोग उन सिद्धांतों के बारे में जानकारी पा सकते हैं जो आमतौर पर प्रयोगशालाओं या प्रायोगिक अध्ययनों से जुड़े विषय माने जाते हैं, और इस तरह के अनुभव स्वयं वैज्ञानिकों को भी दोनों क्षेत्रों के बीच अटूट संबंधों के बारे में अधिक जागरूक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई न्यूरोसाइंटिस्ट स्टेज पर घबराहट या स्टेज फ्राइट का अनुभव करता है।
अभिनय के टाइम पे मंच में प्रवेश करने के पहले जब हम विंग्स में खड़े रहते हैं तब एक बहुत टेंशन, एक बहुत स्ट्रेस काम करता रहता है अंदर। लगता है कि पता नहीं इतने सारे अनजान लोग ऑडियंस में बैठे हैं, पता नहीं मतलब कैसे मैं उनको जाके फेस करूं। ऐसे एक बहुत ही अनजान एक एनवायरनमेंट है जब हम विंग से निकाल के स्टेज में प्रवेश करते हैं इतने सारे लाइट के नीचे, इतने सारे लोगों के नीचे, लोगों के सामने। तो इसको हम कभी कभी कहते हैं स्टेज फ्राइट, यानी स्टेज में उठने का, स्टेज में बात करने का या परफॉर्म करने का भय। मैं तो हर बार फेस करता हूँ जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, अगर मैं ये वो सेम नाटक मैंने पहले भी किया है या फिर मैं पहला बार कर रहा हूँ, जो भी हो हमेशा मुझे स्टेज फ्राइट होता है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, अंश होते हैं शरीर के, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये एक के बाद एक फंक्शन करके एक हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस को फेस करते हैं तब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाता है। अभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा लगता है कि जो स्ट्रेस के लिए हम लोग जैसे एक्सपीरियंस करते वो सारे एक्सपीरियंसेस होता है। बट जब ये स्ट्रेस चला जाता है तब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हाइपोथैलेमस को बोलता है अब तू चुप हो जा क्योंकि स्ट्रेस चला गया। तो इसीलिए क्या होता है कि पूरा जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड ये फिर स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये स्विच ऑफ होने के बाद ये शरीर का जो संतुलन है, जो स्थिति है, ये फिर से वापस आ जाता है और स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस जाता है और हम सही सलामत रहते हैं।
रंगमंच के क्षेत्र में अपने अनुभव के साथ प्रभोहन अच्छी तरह से जानते हैं कि घबराहट के ऐसे पलों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। जैसा कि प्रभोहन और देवोज्योति ने बताया, कलात्मक माध्यमों को अपनाने वाले वैज्ञानिक अपने वैज्ञानिक कार्यों में नए विचारों का संचार कर सकते हैं। हमने जाह्नवी से सीखा कि कैसे मानवी की विज्ञान का पूरक बन सकती है। क्या कलात्मक माध्यम विज्ञान को समृद्ध करते हैं? बेशक। और क्या विज्ञान कला को समृद्ध करता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा प्रदर्शन उसी समय सर्वश्रेष्ठ होता है जब हम अपने बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क दोनों का साथ साथ उपयोग करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे नेचर इंडिया पॉडकास्ट के आर्काइव्स में आपके लिए ऐसे कई अन्य कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद हैं। आप खुद सुनें और अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी सुनाएं। भारतीय विज्ञान जगत पर जानकारियों से भरे एक और एपिसोड के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। मैं हूं शुभ्रा प्रियदर्शिनी और ये है नेचर इंडिया पॉडकास्ट।
इस एपिसोड के निर्माण में समर्थन के लिए DBT वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस को धन्यवाद।